जीवन के लिए सत्य सितंबर 6 ईर्ष्या के परिणाम। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। नीति वचन अध्याय 14 वचन 30। ईर्ष्या आत्मिक कैंसर के समान है जो व्यक्ति को भीतर से नष्ट कर देती है। ईर्ष्या के परिणाम गंभीर होते हैं। राजा सुलेमान इस घातक रोग के बारे में हमें स्पष्ट शब्दों में सचेत करता है और इसके स्थान पर हमें स्वास्थ्य और शांति का जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ईर्ष्या हमें नुकसान पहुंचाती है, भले ही यह दूसरों को प्रत्यक्ष रूप से कोई हानि न पहुंचाए, लेकिन यह ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देती है। यह दूसरों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी प्रभावित करती है। यह एक नकारात्मक तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण को जन्म देती है, जिससे हम अपने पड़ोसियों को अनुचित संदेह और क्रोध की दृष्टि से देखने लगते हैं। यह हमें दूसरों की खुशी में सहभागी होने से रोकती है और हमारे संतोष को छीन लेती है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास हमसे अधिक होगा और जिससे तुलना करके हम असंतोष में घिर सकते हैं। ईर्ष्या हड्डियों को गला देती है। ईर्ष्या अचानक और चुपचाप हमारे मन में घर कर सकती है। प्रेरित पत्रस इसका एक उदाहरण है। क्रूस पर यीशु की मृत्यु से ठीक पहले उसने मसीह का 3 बार इनकार कर दिया और परिस्थितियों को और बिगाड़ दिया। यूहन्ना अपने सुसमाचार में बताता है कि पुनरुत्थान के बाद यीशु ने पत्रस और अन्य चेलों के लिए समुद्र के किनारे नाश्ता तैयार किया और पत्रस से बातचीत की। इस मुलाकात में यीशु ने पत्रस के साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित किया, उसे फिर से अपने पीछे चलने के लिए बुलाया और उसे अपने लोगों की चरवाही करने की जिम्मेदारी सौंपी। यदि उससे एक दिन पहले पत्रस से पूछा जाता कि उसके हृदय की सबसे बड़ी लालसा क्या है, तो वह यही होती। लेकिन जब यीशु ने कहा कि पत्रस को भविष्य में उसके लिए अपना जीवन देना होगा, तो पत्रस की क्या प्रतिक्रिया थी? उसने यूहन्ना की ओर देखकर पूछा, हे प्रभु, इसका क्या हल होगा? यीशु, जो ईर्ष्या के खतरों को भलीभांति जानता था, उत्तर देता है, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना अध्याय 21 वचन 22। यह कितनी सरलता से हो जाता है कि जब हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ रहे होते हैं, तब भी ईर्ष्या हमें जकड़ लेती है और हमें यह भुला देती है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है और हमें क्या दिया है। तो फिर इस आत्मिक बीमारी का कोई इलाज कैसे संभव है? जो कार्य हम सबसे आखिर में करना चाहते हैं, वही हमें सबसे पहले करने की आवश्यकता है। ईर्ष्या को पाप के रूप में पहचानना और इसे परमेश्वर की उपस्थिति में अंगीकार करके प्रकाश में लाना। इसके बाद हम प्रार्थना के द्वारा ईर्ष्या को हर क्षण में त्यागने का संकल्प लें और पवित्र आत्मा से सहायता मांगें कि वह हमें स्मरण कराए कि मसीह में हमें कितना कुछ प्राप्त हुआ है। जब तक हमारे हृदय ईर्ष्या से नहीं बल्कि आनंद से भर न जाए, तब तक हमें सतत प्रयास करते रहना है। जो लोग अपनी आशीषों को गिनते हैं, वे दूसरों को मिली आशीषों के लिए परमेश्वर की स्तुति करने में अधिक सक्षम होते हैं और एक शांत चित्त जीवन प्रदान करता है। अपनी ईर्ष्या को अनियंत्रित रूप से आपको खोखला न करने दें। यह किस रूप में आपको जकड़े हुए है, इसे स्वीकार करें, इसके लिए प्रार्थना करें और सुसमाचार के सत्य से इसका विरोध करें।